तफसीर मक्की सूरत है, 40 आयात, 2 रुकू, अल्फाज और कलेमात की तादाद 161, जबकि हुरूफ की तादाद 682 है। इसका नाम पहली आयत के लफ्ज अल कयामा से लिया गया है, और ये सिर्फ अलामती नाम नहीं है बल्कि इसका उन्वान भी है, क्योंकि पूरी सूरत में कयामत पर बहस की गई है। सूरत कयामा में कयामत के अहवाल बयान हुए हैं, और इंसान की मौत के वक्त जो हालत होती है वो बताई गई है, और इंसानों को आखिरत से गाफिल होने पर मुतनब्बे किया गया है, जगाया गया है, सरजनश की गई है। ला उक्सिमु बियौमिल कियामा वला उक्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा। आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक कयामत की कतियत पर शहादत दी गई है, दलाइल हैं। ला उक्सिमु, अब आप देखिए कि सूरत अल कयामा के बिल्कुल आगाज में ला आया है, और ला नाफिया भी होता है, लेकिन मुफस्सरीन ये कह रहे हैं कि ला यहाँ पे जायदा है। आपने नोट किया होगा तर्जमे के दौरान मैंने ला का तर्जमा नहीं लिखाया, तो ला जायदा है, और अरबी जबान का ये एक असलूब है, ये एक तरीका है। कुरान में हमें और जगह पे इसकी मिसाल मिलती है, मा मना का इल्ला तस्जुद, सूरत अल आराफ आयत 12, और बहुत से दीगर मकामात पर। तो असल में ला जायदा, फिर इसके मानी क्या हैं? इसके मानी ये हैं कि पहले ही से कोई बात हो रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तद्दीद की है। ला जायदा उस वक्त आती है जब कसम किसी मुखालिफ की बात रद्द करने के लिए खाई जाती है, तो उसके शुरू में हरफे ला उस शख्स का जो बातिल ख्याल होता है उसकी नफी के लिए जायद इस्तेमाल होता है। और अहले अरब जो थे उनके यहां ये तरीका बड़ा मारूफ था, मशहूर था। ला उक्सिमु बियौमिल कियामा, मैं कसम खाता हूं कयामत के दिन की। फिर दूसरी एक राय ये है कि ला यहां पर नहीं के लिए है, नाफिया है, जायदा नहीं बल्कि नाफिया है। वो ये कहते हैं कि जब जो है ये सूरत नाजिल हुई तो इसकी वजह ये है कि मक्का की जो है वो महफिलों में और उनकी गलियों में, उनकी सड़कों पर कोई बात चल रही थी जिसकी तर्दीद में ये सूरत नाजिल हुई, और इस सिलसिले में हमें जो है वो पता भी चलता है कि मुशरिकीन जब कयामत का इनकार करते तो यूं कहते थे कि मुर्दा हड्डियों में जान कैसे पड़ेगी, हड्डियां कैसे जमा हो जाएंगी। इसी तरह एक वाकया ये पेश आया कि अदी बिन रबिया एक आदमी था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बता दीजिए कयामत कब आएगी और क्या क्या अहवाल गुजरेंगे, कैसी होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कयामत का हाल बता दिया। वो सुनकर कहने लगा, अगर मैं उस दिन को अपनी आंखों से देख लूं तब भी तुम्हारी तस्दीक न करूंगा और तुम पर ईमान न लाऊंगा, मगर इस सूरत में कि अल्लाह हड्डियों को जमा कर दे। और बाज कहते हैं कि अबू जहल ने इनकार के तौर पर यह कहा था कि क्या मोहम्मद ये ख्याल करते हैं कि ये हड्डियां जब गल जाएंगी तो अल्लाह ताला इनको जमा कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी तर्दीद की और कयामत के दिन की, और ऐसे नफ्स की कसम खाई जो खुद अपने ऊपर मलामत करे, गुनाह हो जाने पर नादिम हो, शर्मिंदा हो। तो दूसरी राय यह है कि ला जो है यहां पे नहीं के लिए आई है, کہ جیسے اہل مکہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جو بات تم کہتے ہو معاملہ اس طرح نہیں، بلکہ میں قیامت کے دن کی جو ہے وہ قسم کھاتا ہوں۔ تو نہیں کس بات پر ہے؟ یہ نہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت نہیں آئے گی، بلکہ یہ کہ جو بات تم کہتے ہو نہیں نہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، نہیں نہیں میں رد کرتا ہوں اس بات کو جو تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی نہیں، اور ہم تمہاری پور پور کو ٹھیک بنا نہیں سکیں گے، تمہیں زندہ کر نہیں سکیں گے، تو قیامت آ کر رہے گی۔ اور آپ دیکھیں قیامہ قوم سے ہے، قائم ہو جانے والی، یہاں پہ بڑی شدت ہے۔ یہاں پہ جو ہے ایک طرف اللہ تعالی اہل مکہ کی جو باتیں ہیں ان کا مذاق اڑانا، اس کی تردید کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات جو بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت کی قطعیت پر، قیامت کے آنے پر قطعی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ قیامت آئے گی، خود قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا نا، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، کبھی کائنات کی، لیکن یہاں قرآن کا بڑا خوبصورت اور بڑا عجیب انداز ہے کہ خود جو ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو قسم کھائی اور اپنی بات کو مؤکد بنایا، تو قسم کس کی کھائی؟ خود قیامت کے دن کی۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا دن جسے قائم ہونا ہے وہ قائم ہو کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی، اور اس یقین دہانی کے لیے قیامت کے دن کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ یقیناً واقعہ ہو کر رہے گی۔ جیسے ہم اپنی جو ہے وہ ارد گرد زندگی میں دیکھیں کہ بعض لوگ ہیں کہ نہ موت کی تیاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا دیکھا جائے گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر موت آ جاتی ہے نا۔ ایک امیر کے جو ہے وہ محل پر بھی، بادشاہ کے محل پر بھی، اور ایک غریب کے جو ہے وہ آستانے پر بھی، اس کے گھونسلے اور اس کی جھونپڑی پر بھی۔ دوسری جو قسم کھائی ہے وہ اللہ رب العزت نے کھائی نفس لوامہ کی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اب یہ دوسری قسم ہے، اور یہ جو قسم کھائی اللہ رب العزت نے یہ نفس لوامہ کی۔ اور قرآن مجید میں نفس انسانی کی تین قسموں کا ذکر ہے۔ پہلا نفس جو ہے، پہلی قسم جو ہے، یہ وہ قسم ہے کہ نفس انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اس نفس کا نام نفس امارہ ہے۔ سورۃ یوسف آیت 53، وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا، نفس بڑا ہی برائی کی راہ سجھانے والا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ تو نفس امارہ جو ہے امر سے ہے، اور امارہ حکم دینے والا، یہ عین سے نہیں ہے، یہ الف کے اوپر آپ فتحہ دے دیں تو اس سے ہے، الف میم را ہا، اور معنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ امر دینا، حکم دینا۔ تو نفس امارہ برائیوں کا حکم دینے والا، امادہ کرنے والا۔ پھر دوسرا نفس جو ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جو غلط کام کرنے، سوچنے، نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے، اور آج کل کی اصطلاح میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو نفس لوامہ یہ لام سے ہے، لام واو میم، اس کے معنی ہے ملامت کرنا، سرزنش کرنا۔ نفس لوامہ سے مراد وہ نفس ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرے کہ فلاں گناہ کیوں ہو گیا، جو عمل واجب تھا، جو نماز فرض تھی، اس کی ادائیگی میں کوتاہی کیوں ہو گئی، فلاں موقع پر میں نے اس کو یہ جملہ کیوں بول دیا؟ وہ اپنی زبان کو پھر کھینچتا ہے، پھر وہ روتا ہے، پھر وہ آنسو بہاتا ہے، وہ اپنے آپ پر ملامت کرتا ہے کہ فلاں نے تو وہ نیکی کر لی اور وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو میں نیکیاں کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنے میں جو ہے پیچھے کیوں رہ جاتی ہوں، وہ بھی تو میری طرح ہے نا، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی شوہر ہے، تو میرے سے جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس حصے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نفس لوامہ کی تفسیر میں یہ بات کہی کہ نفس لوامہ دراصل نفس مومنہ ہے، فرمایا واللہ مومن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا ہے۔ تو پھر اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ نفس مومنہ، ایمان لانے والا، کر گزرنے والا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہے اس کی تفسیر میں نفس لوامہ کی قسم کھانا اللہ تعالی کی طرف سے کہتے ہیں کہ ایسے جو نفوس مومنہ ہیں یہ ان کے اکرام اور شرف کے اظہار کے لیے ہے۔ اللہ نے کیوں قسم کھائی؟ تو کیونکہ مومن نفس ہے، نیک نفس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت دینے کے لیے، ان کو ایک شرف اور بزرگی دینے کے لیے قسم کھائی کہ یہ اتنا اچھا نفس ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر کر کے کوتاہی پر نادم ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس لوامہ جو ہے اس میں نفس مطمئنہ بھی شامل ہے، کیونکہ لوامہ اور مطمئنہ دونوں نفس متقی کے لقب ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا یہ ان کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا، تو نفس لوامہ۔ اب ہمیں بھی اپنا سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا حال جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر تیسری جو قسم کھائی قرآن نے، جو نفس کی تیسری قسم بتائی وہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ، یہ کون سا نفس ہے؟ وہ نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے پر اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جو نیکیوں کا متلاشی رہتا ہے، جس کو نیکی کے ماحول میں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، برائی کے ماحول میں اس کو گھٹن ہوتی ہے، اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے، وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ کراہت محسوس کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے سورت شمس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو اب یہاں پہ نفس کو توازن رکھنے کی ایک ترکیب بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ نفس جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ میں کہاں پر ہوں اور کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو نفس لوامہ وہ کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے۔ اب تین جو نفس ہیں ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ پوری زندگی ہمارا جو شمار ہے وہ کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ ایک ہی حالت میں ہیں، کیونکہ کبھی نفس امارہ بن جاتا ہے تو برائیوں کا حکم دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی نفس جو ہے برائی کے کرنے پر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر لیا، اور پھر کتنی اوقات اور لمحے اور گھڑیاں ایسی گزرتی ہیں کہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ میں نے صبر تو کیا، میں نے شکر تو کیا، تھا بڑا مشکل لیکن بہت دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ اسی طرح رت جگہ تو کیا، کلاس میں آئے تو صحیح، پڑھائی تو کی، محنت تو کی، دو ڈھائی سال مشقت کے گزارے، लेकिन दिल बड़ा मुतमिन है, दिल बड़ा मुतमिन है कि थकन भी है और दर्द भी हो रही है, आंखें भी जल रही हैं और हाथ भी दुख रहे हैं, कमर भी दुख रही है, पाँव में दर्द है, लेकिन आपका दिल बड़ा मुतमिन है कि मैं जो कर रही हूँ ये बहुत अच्छा काम है जो कि मैं कर रही हूं, और अगर मैं ना करूं तो मैं पीछे रह जाऊंगी। तो असल बात जो मेरे और आपके सामने आती है कि इन तीनों में से, इन तीन जो ये नफूस की किस्में हैं, हम हर वक्त किसी एक हालत पर होते हैं, एक हालत पर होते हैं, और सहाबाए कराम तो ज्यादातर नफ्से मुतमिन्ना ही थे और नफ्से लवामा। फिर कितनी मलामत करते थे अपने आप को, कितना रोते थे कि आंखें जो थी उनकी बहती रहती थी, और सारी जिंदगी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह नो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो का मुकाबला ही करते रहे। मेरे तो दिल से यही बात नहीं जाती, एक हसरत बन गई, एक भूख है कि सारी जिंदगी वो मुकाबला करते रहे। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहा कि अगर मेरे बाद कोई पैगंबर आता तो वो उमर फारूक होते, और एक मौके पर आपने कहा कि तुम उमर उमर की बात करते हो, उमर तो जिस रास्ते से गुजरता है शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है, शैतान उमर से डरता है, क्योंकि एक दफा जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतें बातें कर रही थी, कोई सवाल पूछ रही थी, और इतने में उमर आ गए तो औरतें ना भाग भाग कर साइड पर होने लगी, तो कोई नाराज हुआ कि तुम अल्लाह के नबी से नहीं डरती हो और उमर से डरते हो, डरती हो। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उमर की बात करते हो, उमर तो जिस रास्ते से गुजरता है शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की बात कि जब किसी को नेकियों की दौड़ में आगे बढ़ता हुआ देखते तो हसरत करते, काश के इसकी जगह अब्दुल्ला बिन मसूद होता, काश के इसकी जगह अब्दुल्ला बिन मसूद होता। और फिर इसी तरह जो है वो सहाबा का मलामत करना, कभी अपनी जबान को खींचना, कभी अपनी दाढ़ी को पकड़ना, कभी आंखों से आंसुओं का बहाना, और कभी अपनी गुज़िश्ता जिंदगी पर जो है वो मलामत करना कि मैंने देर से इस्लाम कबूल क्यों किया, फलां ने जो ये बात कह दी मैंने क्यों ना की। मिकदाद बिन अस्वद रजी अल्लाह ने कहा था ना, कब कहा था, गजवे बदर का मौका था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तवज्जो दिला रहे हैं जिहाद के लिए, और उस मौके पर जो है आपने अंसार को भी बुलाया, मुहाजरीन को बुलाया, उनकी राय ली, तो एक सहाबी उठे मिकदाद बिन अस्वद और कहने लगे ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को जैसे बनी इसराइल के लोगों ने कहा था, तो बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि जा आप और आपका रब जाकर लड़े, फकातिला यानी आप दोनों जाकर लड़े, हाँ हुना कायदून, हम तो यहां बैठे हैं, कहा कि हम दाएं से भी बाएं से भी आगे से भी पीछे भी, हत्ता कि आप हुक्म देंगे तो समंदरों में कूद पड़ेंगे और हम आपके साथ चलेंगे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह नो कहते हैं कि उस वक्त मेरे दिल में ये हसरत पैदा हुई, काश के जुमले मैंने कहे होते। वला उक्सिमु बिन नफ्सिल लवामा, और नहीं मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। तो इसके मानी ये हैं कि पूरी जिंदगी का हिसाब होना है और हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए, जायजा लेना चाहिए, अपने जमीर को बेदार करना चाहिए, अपने नफ्स को जगाना चाहिए और अपने आप से बार बार पूछते रहना चाहिए कि कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या क्यों कैसे जो है ना, ये बहुत कसरत से किया करें ताकि नीयत वाजे हो और काम जो है पता चले कि वो लहव है या कि नेकी का है, और फिर ये कि उस काम का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। मकदमत व आखरत, ये बात बहुत अहम है। या सबुल इंसान, क्या इंसान हिसाब कर रहा है, क्या इंसान ये समझ रहा है, अल्लन्नजमा कि हम हरगिज नहीं जमा कर सकेंगे, इजामहू उसकी हड्डियों को। अब आप देख लीजिए कि यहां पर ये बात कही जा रही है कि इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे, तो ये जो ऊपर दो दलीलें दी गई हैं और जो कसम खाई गई है तो वो इस चीज पर कसम खाई गई है। पहली कसम कयामत आकर रहेगी, कसम खाता हूं कयामत की। दूसरी कसम ملامت کرنے والے نفس کی، کیونکہ انسان کو اس کا نفس ملامت کرتا رہتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا بات، کہ ہم ہڈیوں کو جمع کریں گے پھر حساب کتاب ہو کر رہے گا. تو ہڈیوں کو جمع کرنا، اس سے دو باتیں پتا چلتی ہیں، نمبر ایک کہ دنیا کا خاتمہ یقینی ہے، نمبر دو موت کے بعد دوسری زندگی ضروری ہے. کیونکہ جب انسان مرتا ہے تبھی تو اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں، ہڈیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. تو ہڈیوں کا گل سڑ جانا، ہڈیوں کا ختم ہو جانا، اور عظامہ، عظام جو ہے اس کا واحد ہے عظمن، اور عظیم کی جمع بھی عظام ہی آتی ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہڈیاں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ کتنی ہڈیاں ہیں، بعض کہتے ہیں 360 ہے نا. تو اور آپ جو ہے وہ یہ بھی دیکھیں کہ صرف پورے جسم کی جو ہے وہ 360 ہڈیاں نہیں، بلکہ یہ ایک آپ اپنے ہاتھ کو ہی دیکھیں کتنے اس کے جوڑ ہیں، جوائنٹ ہیں، اور کتنی اس کی ہڈیاں. آنکھ کو ہی لے لیں، باریک باریک کتنی ہے، کان کو دیکھ لیں. اور ہڈیاں بھی مختلف قسم کی ہیں، کوئی سخت ہیں، کوئی نرم ہیں. اور کہتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ ہڈیوں کا ایک پنجر ہے، جسم کے نازک اعضا، اس میں دماغ، دل، پھیپھڑے، ان کی حفاظت ہڈیاں کرتی ہیں. پھر ہڈیوں کے ٹشو جو ہیں یہ بے روح نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہے کہ ان کے اندر ایک جان ہوتی ہے، یہ کیلشیم، فاسفیٹ اور معدنیات وغیرہ کا ذخیرہ کرتے ہیں. تو جو ہے وہ ہڈیاں کس سے بنتی ہیں؟ خون سے بنتی ہیں، اور خون کے سرخ سیلز جو ہیں اس سے جو ہے وہ ہڈیاں بنتی ہیں اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہمارے جسم کو سہارا دیتی ہیں. اب ران کی ہڈی کو دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ یہ ران کی ہڈی اس وقت 1 ٹن وزن اٹھاتی ہے جب یہ بالکل سیدھی کھڑی ہو، اور ہمارے ہر قدم پر جو ہم اٹھاتے ہیں یہ ہڈی ہمارے جسم کے وزن سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے. مثلا آپ ہر شخص دیکھیں کہ اس کا ویٹ کتنا ہے، تو کب یہ جو ہے وہ ہمارے جسم سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے؟ جب ہم جو ہے چلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں. ایک کھلاڑی اونچی چھلانگ لگاتا ہے اور زمین پر آ کر گرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے پیلویس پر جو ہے وہ 1400 کلو میٹر یا 1400 کلو گرام جو ہے نا وزن پڑتا ہے. ہر کھلاڑی جب بھاگتا ہے تو اس کے پیلویس پر 1400 کلو گرام دباؤ پڑتا ہے. تو کیسے کہ ڈھانچہ ہے، اور جیسے آپ دیکھیں کہ جو ہے کوئی مشین ہے تو اس کے کئی پرزے ہوتے ہیں اور پھر جوائنٹ ہیں، وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو ہڈیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ بے مثال ان کی تخلیق ہے، اور پھر جو ہے ان کے اوپر کوئی بڑے جوڑ ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی باریک ہیں. پھر جیسے بڑی بڑی مشینوں کو جو ہے جب جوڑا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے اس میں پیچ بھی ہوتے ہیں، بہت باریک باریک بھی ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. آپ کبھی دیکھیں آپ نے گاڑی چلتی دیکھی ہو تو گاڑی کا آگے کا حصہ جب اٹھایا جاتا ہے تو کیا اندر لگا ہوتا ہے، چھوٹا 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 چھوٹا، سمجھ ہی نہیں آتی. جہاز کو آپ دیکھیں، جہاز کو دیکھیں، کسی ٹیکنیشین کو دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی ان کی ترتیب ہے. تو ہڈیوں کا اندرونی ڈھانچہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایسے بنایا گیا ہے جیسے بریجز اور مینار یا ٹاور نہیں تعمیر جب کیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے اس کی باقاعدہ ایک مچان جو ہے نا، مچان کے مانند ہے. اور بس فرق یہ ہے کہ انسان کا جو ہڈیوں کا اندرونی ڈھانچہ ہے بہت پیچیدہ ہے، جامع ہے اور اعلیٰ ہے، اور اس کی ہڈیاں زیادہ مضبوط اور ہلکی ہوتی ہیں تاکہ انسان ان کو آرام سے جو ہے لیتا ہوا، ان کا استعمال کرتا ہوا چل سکے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یہ ہڈیوں کے جوڑ جو ہے چل چل کر کمزور ہو جاتے ہیں، استعمال کر کر کے پرانے ہو جاتے ہیں. مشینوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد خراب ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی سپر طاقتیں بھی ہر تھوڑے دنوں میں ان کے ہاں کی ایک بڑی جو کمپنی ہوتی ہے ایک اور جہاز تیار کر رہی ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے گھٹنے جو ہیں اور اس کی رانیں جو ہیں उसके वजन को उठा नहीं पाती है। तो कोई घुटनों का ऑपरेशन करवाता है और कोई आंखों का और कोई हाथों का और फिर कोई पाँव का। तो और दूसरी बात यह कि हड्डियों के अंदर एक लचक रखी गई है और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, क्योंकि अगर ये लिक्विड ना हो तो ये आपस में खराश से ही बार बार आपस में लगकर जो है ना इनमें टूट फूट हो जाए। तो जो लिक्विड होता है इनको मूव तो करने देता है लेकिन टूट फूट के अमल से जो है इनको बचाता है। फिर इसी तरह मिसाल के तौर पर इन हड्डियों में जो लचक होती है, हमल के आखिरी महीनों में औरतों की कूल्हे की हड्डियां फैलकर एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। ये एक बेहद अहम जिक्र है क्योंकि बच्चे की पैदाइश के दौरान ये फैलाव इसके सर को रहम मादर से जो है कुचले जाने से महफूज रहकर बाहर आने में मदद देता है। अगर कूल्हे की हड्डियां जो हैं वो एक दूसरे से दूर ना हो, जैसे आखिरी दिनों में और आखिरी महीने में बच्चे का सर नीचे की पोजीशन में आता है और नीचे नीचे आता चला जाता है और पेट का निचला हिस्सा जो है वो भारी भी होता है और फिर डॉक्टर ये देखता है कि सर फिक्स हो गया है, तो क्या है कि हड्डियां खुद ब खुद कूल्हे की उनमें एक लचक है और साइड पर होती चली जाती हैं। तो अगर वो साइड पर ना हो तो बच्चे का सर मां के पेट के अंदर कुचला जाए और वो साइड पर होती हैं, उनमें एक फैलाव आता है और फिर बच्चा जो है महफूज तौर पर बाहर आने में जो है वो उसको मदद मिलती है। फिर हड्डियों के बारे में मौजदाना तौर पर एक बात और है कि इनकी लचक, पायदारी और हल्कापन ऐसा है कि अगर एक हड्डी टूट जाए अब खुद ब खुद जो है उसकी मुरम्मत हो जाती है, जिस्म के अंदर एक जो है वो शिकस्त और रेख का अमल जारी रहता है। ये दूध, गोश्त और अंडे और सब्जियां और जो कुछ भी हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीजें पैदा की हैं, जब हम खाते हैं तो हमारे जो मिलियन सेल्स हैं खुद ही मिलकर काम करते हैं और अंदर जो है उसको जो है वो मुकम्मल करते चले जाते हैं। फिर आप देखें मोरे में जो रीढ़ की हड्डी जो है इसमें भी क्या है कि मुसलसल हरकत और रगड़ से जो है इनको बचाया जाता है, रीढ़ की हड्डी को। और मरमरी हड्डियां जिनको डिस्क कहते हैं, आप देख लें कि अगर वो जो है वो प्लेट नुमा डिस्क झटकों से जो है उसको महफूज रखा जाता है और रीढ़ की हड्डी जो है अगर इसकी ये जो ये डिस्क है ये अपनी, ये देखें मैंने ये आपके लिए एक तस्वीर मैं लाई हूं और इसमें देखें ये गर्दन के मोहरे हैं, ये सीने के मोहरे हैं, ये पीठ के हैं और ये मोहरों के दरमियान की ये डिस्क है और इस पर नंबर भी लगे हुए हैं, जैसे नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है। फिर इसी तरह जो है मकत की हड्डी है पीठ की, और अब क्या है कि इनके दरमियान जो है एक बड़ा जो है एक लचक है, एक खास इनकी साख्त है और रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर वाला सिरा जो है इसे तोड़कर दिमाग में जो है वो घुस सकता है अगर जो है वो अल्लाह ताला इसको कंट्रोल ना करे, जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म का एक निजाम है। तो बहरहाल आप बहुत सी जो है वो साइंस पर किताबें हैं, अल्लाह की निशानियां अकल वालों के लिए ये हारून याहिया की किताब है, इसमें से पढ़ सकती हैं। कुरान और साइंस डॉक्टर जाकिर नाइक की है और भी किताबें हैं। बहरहाल अय्या सबुल इंसान अल्लन नजमा इजामा, क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम इसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? इसका मतलब ये है कि जो रब पहली दफा पैदा कर सकता है तो दूसरी दफा पैदा करना तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहा बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हाँ क्यों नहीं, बला आया है जो वो कह रहे थे उसको रद्द करके अल्लाह ताला कह रहे हैं हाँ क्यों नहीं, कयामत आएगी और मैं तुम्हें जिंदा करूंगा और फिर तुम में से एक एक के अमल का हिसाब लूंगा और ऐसा क्यों नहीं होगा। बला क़ादिरीना, कादिर की जमा है क़ादिरीन, कि हम तो कुदरत रखते हैं इस बात पर, अला अन सव्विया कि हम ठीक ठीक बना दे। तो सव्विया, युसव्वी और नुसव्वी, ठीक ठीक बनाना, तो हम ठीक ठीक बना दें, हम इस पर कुदरत रखते हैं, हम दुरुस्त कर देंगे। क्या चीज? बनाना। बनाना किसे कहते हैं? उंगलियों के अतराफ और पोर को कहते हैं, इसका वाहिद है बनाना तुन, वो बनाना नहीं, कौन सा बनाना जो आप खाती हैं, केले की बात नहीं है, उंगली की बात है। वैसे आप देखें उंगलियों की साख भी केलों की तरह लगती है, तो ऊपर का पूरा जो पोर है उसके लिए आता है। तो बनाना तो उनकी जमा है बनान, और फिर इसकी जो है वो जमा बना नात भी आती है। तो हम उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर है। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि बड़ी 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 हड्डियों को जमा करके तुम्हारा ढांचा फिर से खड़ा कर देना, ये भी बड़ी बात है, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नाजुक तरीन जिस्म के हिस्से उंगलियों की पोर पोर को हम वैसा ही बना सकते हैं जैसे कि वो पहले था। और आप देख लें कि ये उंगलियों की जो लकीरें हैं, बाज कहते हैं लाइनें, ये बोलती हैं कैसे। और आप देख लें कि अमेरिका और कनाडा में जो लोग रहते हैं और ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप के मराहिल से गुजरे, तो फिंगरप्रिंट एक अहम इसका जो है वो अहम एक स्टेप है। और दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, हर इंसान की के पास कितनी उंगलियां हैं, आप देख लें कि 10 और 10 20, और उसमें से जो है फिर ये उंगलियों का जो इसका ये जो इसके निशान हैं हर इंसान के दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक इंसान भी ऐसा नहीं है कि उसकी उंगलियों की ये जो इसके उंगलियों पर जो निशान हैं वो एक दूसरे से मैच ना करते हो ना, या मैच करते हो, बल्कि क्या कि वो मैच नहीं करते। ना चेहरा मिलता है ना उंगलियां मिलती हैं, बल्कि उंगलियों की साख भी मुख्तलिफ होती है, किसी की मोटी किसी की बारीक, और फिर इनके जो नक्शो निगार हैं इनके उंगलियों के जो खतूत हैं आधा इंच भी नहीं है, छोटा सी ये पोर है। और आप देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक जितने भी इंसान हैं आपस में उनके पोर नहीं मिलते, उनके निशान नहीं मिलते। तो ये क्या है, ये अल्लाह की कुदरत की अल्लाह की सनाई की बहुत बड़ी निशानी है। फिर आप देख लें अंगूठा जो है, आपने बचपन में सुना होगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो कहते थे निकाह के मौके पर अंगूठा लगा दिया जाए। तो अंगूठा जो है ये अदालती फैसले का एक इम्तियाजी निशान जो है वो करार दे दिया गया। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो इसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, बल्कि इंसान ये चाहता है, क्या चाहता है, लियफजुरा अमामा के आगे भी बद अमालियां करता रहे। ये लफ्ज अमाम जो है बिफतिल हमजा, यानी आ जो है इस पर अगर फतह आ जाए तो मानी होते हैं सामने और मुस्तकबिल के मानी ये देता है, जैसे आगे, जैसे जो है वो अमाम कौन होता है, जो मुक्तदियों के आगे खड़ा होता है और फिर नमाज पढ़ाता है, और गोया के आगे भी, और मानी क्या है, गोया के मुस्तकबिल में। एक तो है ना कि मौजूदा जमाने में इंसान गुनाह कर रहा है और आखरत का इनकार करके इंसान ये चाहता है कि आइंदा भी गुनाह ही करता रहे, वो अच्छे काम करना ही नहीं चाहता। तो दो चीजों की कसम खाई, कयामत की और इंसान के नफ्स की, नफ्स लवामा की, और कसम खाई कि कयामत आकर रहेगी। और फिर उसकी तफसील बताई जा रही है कि फिर हम जो है पोर पोर तक को इकट्ठा कर देंगे, हड्डियों को जमा करेंगे, और जब पोर पोर बना सकते हैं तो इंसान के ढांचे को बनाकर जो है वो क्यों ना खड़ा कर दें। और जब इंसान का ढांचा बना सकते हैं तो जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से जो है वो पोर पोर का बनाना हमारे लिए कब नामुमकिन है। पूरे जिस्म के अंदर जो इतनी हड्डियां हैं इन सबको किसने बनाया, इन सबको हम ही ने तो बनाया, तो हम ही जो है वो फिर इंसान तुझे खड़ा कर सकते हैं। और ये यफ जो रा जो है इसके मानी क्या होते हैं, आप पहले भी ये लफ्ज पढ़ चुकी हैं कि वसी पैमाने पर फाड़ना। और फजर जब होती है फिर होता क्या है, उस वक्त जो है वो रात के अंधेरे जो हैं सुबह के उजाले में बदल जाते हैं, और ये जो बदलना होता है कैसा होता है, वसी पैमाने पर होता है। तो फजर आ के मानी है कि किसी को वसी पैमाने पर फाड़ना। तो फजर को फजर इसलिए कहते हैं कि वो सारे उफक पर नमूदार होती है, और फुजूर दीन के अहकाम की पर्दादरी करना। फाजिर और फुजार का क्या मानी होता है कि वो अल्लाह की जो अतात है, जो अल्लाह के अहकामात है, उनको वो दीदा दलेरी से फाड़ता चला जाता है, नडर हो जाता है, सबके सामने और सबके आगे जो है वो फाड़ता है और उस पर उसको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती। तो असल में ये वजह नहीं है कि एक कयामत आ नहीं सकती, या हम इंसान को जिंदा कर नहीं सकते, या हम उनकी हड्डियों को जोड़ नहीं सकते। वजह ये है कि इंसान ये चाहता है कि आगे भी बदअमालियां करता रहे। अब यहाँ पे मुनकरी ने आखिरत के असल मर्ज की निशानदेही की गई है, उसकी तशखीस की गई है कि आखिरत का इनकार की वजह ये नहीं है कि वो इसको नामुमकिन समझते हैं, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि अगर वो आखिरत का इकरार करें तो इन पर कुछ इखलाकी पाबंदियां आयद होती हैं, तो ये इन इखलाकी पाबंदियों को पूरा करना नहीं चाहते। ये एक बेनत्थे बैल की तरह फिरना चाहते हैं कि जिस खेत में चाहे चला जाए, जिस खेत को चाहे चर ले चुग ले, जो चाहे करे, चाहते आइंदा भी इनको छूट मिली रहे और ना अल्लाह के पास जाना पड़े और ना ही अमाल की जो है वो जवाबदेही करनी पड़े। यसअलू अय्याना यौमुल कियामा, इंसान पूछता है आखिर कब आना है वो कयामत का दिन। अब देखें कि यसअलू अय्याना, अय्याना का लफ्ज जो है कभी तो आता है जैसे इस्तफसार के लिए, कोई बात पूछने के लिए कब, और कभी आता है इनकार और इस्तेहजा के लिए। तो यहां ये लफ्ज जो है इनकार के लिए आया है, इस्तेहजा के लिए आया है कि ये चाहता है कि आगे भी जो है बदअमालियां करता रहे। तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस चीज की इन्हें खबर दे रहे हैं कयामत, इसका ये इसलिए इनकार करते हैं कि ये चाहते हैं कि आइंदा भी बदअमालियां करते रहें। अच्छा, बनाना के बारे में ये जो आयत नंबर 4 के आखिर में है, एक बात आप और याद रखें कि हाथों और पैरों के उन अतराफ यानी किनारों को कहते हैं जो जोड़ों, नाखून, लतीफ रगों और बारीक हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं। बनाना, जैसे मैंने कहा ना पोर, तो इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात है, ये भी आप नोट कर लें। हाथों और पैरों के अतराफ यानी किनारे जो जोड़ों, नाखून, लतीफ रगों और बारीक हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं। जब ये बारीक और लतीफ चीजें हम बिल्कुल सही सही जोड़ देंगे तो बड़े बड़े हिस्सों को जोड़ देना फिर हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। तो आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत के वकू पर, कयामत के कयाम पर जो है वो दलाइल दिए हैं, और बड़े पुरजोर दलाइल दिए हैं। और आप देख लें कि एक काफिर जो है ना, उसके भी दिल के अंदर, जिस्म के अंदर दिल है, जमीर है, उसको मलामत करता है कि तुमने ये काम क्यों किया। अब यहां पर जो है आयत नंबर 7 से लेकर 15 तक कयामत के लिए जल्दी मचाने वालों को जवाब दिया जा रहा है। वो क्या कर रहे थे? वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछते थे कि कयामत कब आएगी, वो उसका मुतालबा करते थे। अब यहां पर कयामत की हौलनाकी जो है उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र करते हैं, फरमाया फैजा बरेकल बसर, फिर जब दीदे पथरा जाएंगे। बरक, और आपको पता ही है कि बारा काफ किसे कहते हैं, बिजली के चुंदियाने को, बिजली के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। लुगवी मानी होते हैं बिजली की चमक से आंखों का चुंधिया जाना, क्योंकि बिजली जब चमकती है तो आंखें चुंधिया जाती हैं। फिर होता क्या है कि इंसान जो है हकदक रह जाता है, और ये उसका जो हकदक रहना है कभी तो खौफ की बिना पर होता है, कभी हैरत की वजह से, कभी अचानक हादसे से दो चार होने की वजह से। उसकी निगाह जो है वो परेशान कुन मंजिर की तरफ जो है वो जम कर रह जाती है। और कुरान में इसी बात को यूं भी कहा गया, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीहिल अबसार, अल्लाह तो इन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सूरत इब्राहिम आयत 42। और अब यहां पे बताया जा रहा है कि उस दिन इनकी आंखें जो हैं वो चुंधिया जाएंगी। जब कयामत आएगी तो इन्हें होश नहीं रहेगी, टिकटिकी बांध कर एक तरफ देखेंगे, इनकी आंखें उस दिन जो है हक दक रह जाएंगी। हक दक बिल्कुल ही जो है वो जैसे पत्थरा जाएंगी, क्योंकि कयामत का दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। वहां पे धमाके होंगे, कायनात का निजाम दरम बरम हो जाएगा, गरज भी होगी, बिजली भी होगी, जिससे इंसान की आंखें जो है वो चुंधिया जाएंगी। और एक इसके माने ये भी किए जाते हैं कि दहशत अंगेज नजारों को देखकर निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, जैसे कि बिल्कुल निगाहें जो हैं पथरा जाती हैं। वखसफल कमर, और चांद बेनूर हो जाएगा। खासीन फा, इसके मानी होते हैं, दो मानी इसके अंदर पाए जाते हैं, और एक तो ये है कि रोशनी का चला जाना, और दूसरे इसके मानी है तारीख हो जाना। तो चांद जो है उस दिन उसकी रोशनी भी चली जाएगी और इसके साथ जो है वो चांद तारीख भी हो जाएगा। और आपने सुना भी होगा ना कि खसूफुल कमर है ना, उसके मानी क्या होते हैं, चांद को गिरहन लग गया। और यहां पर जो है खासीन फा इसी मानी में आया है कि चांद जो है वो बेनूर हो जाएगा। सूरज के लिए भी जो है लफ्ज आता है, लेकिन कौन सा, कसूफ, उसके लिए कसूफ का लफ्ज आता है। कसूफ कहते हैं पूरी तरह बेनूर हो जाना, पूरी तरह बेनूर हो जाना। तो सूरज और चांद उनके लिए बेनूर होने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और खसफा का लफ्ज जो है ये लाजिम भी है मुतद्दी भी है कि अल्लाह ने उसको बेनूर कर दिया, और फिर जो जहां जहां से चांद की रोशनी आती थी वो चीजें भी सब बेनूर हो गई। आपने पीछे पढ़ा था, फखसफना बही व बेदारहिल अर्ध, बस हमने इस कारून को और इसके घर वालों को जमीन में धंसा दिया। इसी तरह हमें एक हदीस मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शम्स वल कमरा आयातानी मिन आयातिल्लाही ला यक्सिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयाति, कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं जो किसी की मौत या पैदाइश की वजह से बेनूर नहीं होते। और इसको बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। फिर ऐनुल खासिफतुन, वो आंखें जो अंदर धंसी हुई होती हैं ना, उनके लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है। इसी तरह बेरुन मखसूफतुन, वो कुआं जिसका पानी अंदर गायब हो जाए। इसी तरह चांद के गहन जब चांद को लग जाता है, चांद गहनाया जाता है, तो फिर उसकी रोशनी चूंकि खत्म हो जाती है, उस वक्त जो है वो उसकी रोशनी मांद पड़ जाती है, उस वक्त भी ये लफ्ज जो है वो बोला जाता है। कहा कि तुम कहते हो कि कयामत नहीं आएगी, कयामत तो आके रहेगी। कब आएगी, फाइजा बरेकल बसर व खसफल कमर व जुमिया शम्स वल कमर, और जमा कर दिए जाएंगे सूरज और चांद। इस लफ्ज के कि सूरज और चांद मिलाकर एक कर दिए जाएंगे, इसके क्या मानी है? मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इसके एक मानी तो ये हैं कि कयामत का जब पहला मरहला आएगा कि कायनात का निजाम धर्म भरम हो जाएगा, तो चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद मिलकर एक हो जाएंगे। इसके मानी क्या हैं? क्योंकि चांद ही की रोशनी खत्म नहीं होगी, सूरज की रोशनी असल में खत्म होगी। क्यों? चांद को रोशनी कहां से मिलती है? सूरज से मिलती है। चांद की अपनी रोशनी तो है ही नहीं, जब सूरज तारीक हो जाएगा तो चांद भी तारीक हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर एक कर दिए जाएंगे, एक इसके मानी ये हैं। दूसरे मानी ये हैं कि जमीन यकायक उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी। तो जब जमीन उल्टी चलेगी तो फिर होगा क्या कि सूरज जो है वो कहां से निकलता है? मशरिक से निकलता है। लेकिन जब कयामत का दिन होगा तो उस दिन सूरज मशरिक की बजाय कहां से निकलेगा? मगरिब से निकलेगा। तो जमीन उल्टी चलेगी और उस दिन चांद और सूरज दोनों बयक वक्त मगरिब से तुलू होंगे, वो दिन होगा कयामत का दिन। इसके तीसरे मानी भी बयान किए जाते हैं कि हमारा ये जो है ना कायनात का निजाम, ये एक ग्रेविटी के साथ बंधा हुआ है, कश्य सकल। अब होगा ये कि चांद अचानक जमीन की गिरफ्त से छूट कर निकल जाएगा, अपने ऑर्बिट को छोड़कर जो है वो जमीन की गिरफ्त से ये निकलेगा और सूरज के ऑर्बिट में, सूरज के अंदर जा पड़ेगा। ये भी इसके मानी जो है वो बयान किए जाते हैं, और चांद और सूरज मिलाकर एक कर दिए जाएंगे। ये बड़ा ही सख्त दिन होगा, दोनों बेनूर हो जाएंगे, दोनों जमा हो जाएंगे। तो मानी फिर क्या हमारे सामने आए, या तो ये कि चूंकि सूरज की रोशनी खत्म है तो चांद की रोशनी भी खत्म हो गई। फिर दूसरे इसके मानी क्या है कि दोनों जो है वो एक जगह जमा कर दिए जाएंगे या दोनों का मतला एक ही होगा? यकूल उल इंसानु यौमइज़िन अइनल मफर। यकूल उल इंसानु, इंसान कहेगा यौमइज़िन उस दिन, किस दिन? कयामत के दिन। अइनल मफर, कहां भाग कर जाऊं? फरार, भागना, दौड़ना। उस दिन इंसान जो है वो चीखेगा, पुकारेगा, कहीं आसमान जो है वो दरवाजे दरवाजे है, आसमान फट चुका है, फरिश्ते आ रहे हैं, सूरज चांद जो है वे नूर हो चुके हैं, अंधेरा ही अंधेरा, तामक टोइयां। अपने अमाल और अपने अमाल का एहसास, अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का एहसास, क्योंकि जब कयामत आएगी तो उस दिन इंसान जो है बहुत ही परेशान हाल होगा, बहुत ही परेशान हाल होगा और कहेगा कि अब क्या करूं। कभी तो वो इस बात से डरेगा, एक तो ये कि अब अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होना है, दूसरी राय मुफस्सरीन की ये है कि वो जहन्नुम के अजाब से राह फरार ढूंढेगा, अल्लाह से नहीं बल्कि जहन्नुम के अजाब से। क्यों? एक ही बात है ना कि जो नाफरमान है फिर पकड़ कर कहां डाले जाएंगे? जहन्नुम में डाले जाएंगे ना। तो या तो ये कि वो अल्लाह के अजाब से जो है वो फरार हासिल करेगा, और या फिर ये कि वो खुद अल्लाह ही से जो है वो फरार हासिल करेगा, भागेगा, दौड़ेगा। यकूल उल इंसानु यौमइज़िन अइनल मफर, उस वक्त यही इंसान कहेगा कहां भाग कर जाऊं। कल्ला ला वज़र, हरगिज नहीं वहां कोई जाए पनाह ना होगी। ला वज़र और पनागा, ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, महीज का लफ्ज भी आपने पनागाह के लिए पढ़ा है, और यहां पर जो है उससे हट कर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसकी वजह क्या है? इसलिए कि कुरान में पनागाह के लिए कई अल्फाज आए हैं, सात लफ्ज आए हैं, सात लफ्ज आए हैं, जिनमें पहला है वजर, और वजर जो है वो जेरा पहाड़ को भी कहते हैं और जाए पनाह को भी कहते हैं। तो किसी पहाड़ में कोई क्यों जाता है? ताकि उसकी गार या खोह में जाकर वो छुप जाए। और आप देखें, पीछे आपने मफर पढ़ा, और ये क्या है? ये मजदर मीमी है। यहां आपने वजर पढ़ा, और वजर जो है ये भी पनाह गाह के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो वजर जो है पहाड़ की खो या गार को कहते हैं जिसमें पनाह ली जा सके। तो अब इतनी सख्ती होगी, इतनी शिद्दत होगी, इतनी परेशानी का वक्त होगा कि इंसान चाहेगा कि मैं कहीं भाग कर जो है वो छुप जाऊं, लेकिन होगा क्या कि अब वो कहीं भी छुप नहीं सकता। ये उसका एक अहमकाना मुतालबा होगा कि मैं कहीं छुप जाऊं, लेकिन अब कोई ठिकाना नहीं है, एक ही रास्ता है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ना ईमान लाया जा सकता है, ना अमले सवाले किए जा सकते हैं, ना रोया धोया जा सकता है, अब एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जो है वो जाया जाए। दुनिया में भी ऐसा होता है ना कि बाज़ुकात पुलिस सारे रास्ते बंद कर देती है, डाकू, मुजरिम, जानी, कातिल। और आप अमेरिका में कई दफा ऐसा देखने का इत्तफाक हुआ कि जो है वो मुजरिम जो थे और वो भाग रहे थे गाड़ी में, और ऊपर से हेलीकॉप्टर उनका जो है ना ताकुब कर रहा था, नीचे से पुलिस हमारे घर के पास था, ऊपर हेलीकॉप्टर, और वो निशानदेही जैसे कर रहा था कि कहाँ है कहाँ है, और फिर ताकि उनको जो है वो पकड़ा जा सके ना। तो जदीद जराए सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। इला रब्बी का यौमइज़िन मुस्तकर, इला रब्बी का तेरे रब की तरफ, यौमइज़िन उस दिन, अल मुस्तकर जाकर ठहरना होगा, और काफ रा रा और मानी क्या होते हैं? करार पकड़ना, ठहरना, और मुस्तकर ये ज़र्फ़े ज़मा है, और इसके मानी क्या है कि अब जो है वक्त ये है कि बस अल्लाह के पास जाकर जो है अब खड़ा हुआ जाए, और इसके अलावा कोई जगह नहीं है, और इसके अलावा अब कहीं पनागा नहीं है। बड़ा ही जो है ये शिद्दत की ये आयात हैं, बड़ी सख्त आयात हैं, सख्त अंदाज में जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है? मुतनब्बे किया जा रहा है। इला रब्बी का यौमइज़िन मुस्तकर, युनब्बा उल इंसान यौमइज़िन बिमा कद्दम व अख़र, یونبأ الانسان، اس دن بتا دیا جائے گا انسان کو، یومئذ قیامت کے دن، بما قدم و اخر، بہت اہم آیت ہے، ساری آیات جو جوڑنے والی ہیں اور جو ہے ایک کپ کپی تاری کرنے والی ہیں، اس دن بتا دیا جائے گا انسان کو، بما جو کچھ بھی، قدم اس نے آگے بھیجا، ویسے قدم کے معنی کیا ہوتے ہیں، آگے بڑھنا، وہ اخرا تاخیر پیچھے چھوڑا، تو اس کا اگلا پچھلا کیا کرایا سب بتا دیا جائے گا. مفسرین کہتے ہیں آیت کے اس حصے کے کئی معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی کو اس روز یہ بتا دیا جائے گا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا نیکی یا کیا بدی کما کر اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجی تھی، تو اس کا جو ہے پورا حساب انسان کے سامنے لا کر رکھ دیا جاتا ہے دنیا ہی کی زندگی میں. کیوں؟ اس کو جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس کون سے آتے ہیں، نیک ہوتا ہے تو اچھے فرشتے آتے ہیں، برا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، والنازعاتی غرقا والناشطاتی نشطا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی وقت جنت جہنم اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اس کو کیا بتایا جاتا ہے کہ اچھے برے اعمال کے اثرات کون سے ہیں جو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے، اور نسلوں تک جو ہے پھر وہ چلتے رہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کو یہ سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کر ڈالا. مثلا آپ دیکھیں کہ اس کو یہ بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، تمہیں پڑھنی چاہیے تھی، فلاں فلاں جو ہے تم لوگوں سے تم نے لڑائی کی تھی تو تمہیں معافی مانگنی چاہیے تھی، تم نے معافی نہیں مانگی، بما قدم و اخر، تم نے کیا آگے بھیجا اور کیا تم نے پیچھے چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کو پکڑا جائے گا، پھر اس کو بتایا جائے گا. پھر تیسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا، اس کا پورا حساب، تاریخ، مہینہ، دن، وقت، سب کچھ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. ایسا کیوں ہوگا کہ اتنا بہترین اور اتنا زبردست حساب کیا جائے؟ اس لیے کہ انسان انکار نہ کر سکے، اور اللہ کی پولیس ہے نا، اللہ کی سی آئی ڈی، اللہ کے فرشتے، وہ انسان کے اعمال جو ہیں ان کو اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کو بتا دیا جائے گا. پھر اس کے ایک چوتھے معنی بھی بتائے جاتے ہیں کہ نیکی یا بدی جو بھی اس نے کی اس کو بتا دیا جائے گا، اور جو نیکی یا بدی کرنے سے وہ رکا رہا وہ بھی اس کو بتا دیا جائے گا. تو گویا کہ انسان ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک نیکی کا کام جو ہے وہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ برائی کا کام وہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے لا کر جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا. تو ایک بات نہیں ہے، بے شمار باتیں ہیں. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعادلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. تو اصل وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، بما قدم و اخر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو نیک کام اپنی موت سے پہلے کر لیا وہ آگے بھیج دیا، اور جو نیک یا بد، مفید یا جو ہے وہ مضر طریقہ، کوئی رسم بھی دنیا میں چھوڑ دی، تو اس کے معنی ہے کہ وہ پیچھے چھوڑا. تو آگے بھیجنا سے مراد جو بھی عمل ہیں، اور پیچھے بھیجنا سے مراد بھی جو بھی اچھے ہیں یا برے، دونوں طرح کے عمل ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، قتادہ رحمت اللہ علیہ، کہ ما قدمہ سے مراد وہ عمل صالح ہے جو اپنی زندگی میں کر گزرا، ما اخر سے مراد وہ عمل صالح ہے جو کر سکتا تھا مگر نہ کیا، اور پھر جو ہے فرصت ہی ضائع کر دی. تو ایک ایک گھڑی کے گزر جانے پر قیامت کے دن انسان کے سامنے زندگی کی گھڑیاں لائی جائیں گی، زندگی کے اوقات لائے جائیں گے، اور وہ ایک ایک گھڑی کو دیکھے گا اور پھر روئے گا اور افسوس کرے گا کہ فلاں اوقات میں میں نیک کام کر سکتا تھا اور میں نے کیوں نہیں کیا. اچھا آپ دیکھیں، آپ کے پاس دن اور رات آتی ہے اور آپ اپنا محاسبہ کرتی ہوں گی، مثلاً ابھی ویکینڈ گزرا اور آپ دیکھتی ہوں گی کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا، میں نے باتوں میں وقت گزار دیا، میں نے سو کر گزار دیا، मैं ऐसे ही बैठी रही। बाजू का तो देखा फोन पर होते हैं, फिर अफसोस करते हैं कि काश के साथ में जो है मैं ये काम कर लेती, मैं साथ साथ इस्त्री कर सकती थी, मैं साथ साथ लहसुन छील सकती थी, सब्जी बना लेती, ताकि बच्चे को बैठी दूध ही साथ पिला देती। आप अफसोस करती हैं कि ये काम समेट लेती ताकि मैं तवज्जो से फिर पढ़ाई करती ना। तो इंसान जो है अपना मुहासबा करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस दिन इंसान को इंसान का अगला पिछला किया कराया सब बता दिया जाएगा। बल इंसान अला नफ्स ही बसीरा, बल्कि इंसान जो है अपने नफ्स पर क्या है, बसीरतुन है। इसके दो मानी बताए जाते हैं। अला जो है यहाँ पे खिलाफ के लिए आया है, ऊपर, कि इंसान जो है इंसान का अपना वजूद, खुद इंसान जो है वो अपने ऊपर बसीरतुन है। मानी इसके क्या है कि इंसान अपने ऊपर गवाह है, देख रहा है अपने आप को। क्योंकि बस एक होती है ना आंख, और एक आंख के अंदर बसीरत होती है कि जिससे इंसान देखता है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम, हमें खुद नजर आ रहा है। तो खुद इंसान जो है वो अपने आप से बाखबर है, आगाह है। बसीरत उनके मानी हुज्जत के भी आते हैं, बसायर बसीरत उनकी जमा है। तो मानी क्या हुए, दूसरे मानी मुफस्सरीन ये बताते हैं कि इसके मानी गवाह के भी हैं, हुज्जत गवाही, के इंसान के खुद जिस्म के अज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे ना। आंखें बोलेंगी, मुंह बोलेगा, राने, हड्डियां, खून, गोश्त, पट्टे। इंसान जब इनकार करेगा तो इंसान के जिस्म के अज़ा जो हैं वो इसके खिलाफ बातें करने लगेंगे। तो एक इसके मानी है कि इंसान देखता है कि वो क्या कर रहा है, हुज्जत और गवाही। तो मानी है बसीरत उन अला नफ्स ही। दूसरे मानी है शाहिद उन अला नफ्स ही, कि वो खुद अपने ऊपर गवाह है। अगर वो जमीर के आईने में जो है वो अपना जायजा ले, मुहासबा करे, तो उसको खुद पता है कि वो क्या कर रहा है। युनब्बाउल इंसानु यौमाइज़िन बिमा कद्दमा व अख्खर, बलिल इंसानु अला नफ्स ही बसीरा वलो अल्का मआज़ीरा। चाहे वो कितनी ही माजरतें क्यों ना डाले, कितनी ही माजरतें क्यों ना पेश करे। मुफस्सरीन कहते हैं ये माजीर जो है ये क्या है, कि या तो ये माजरत उनकी जमा है, कहते हैं ये दरअसल माजिर था, इसमें से या ज्यादा हो गई और इससे जो है फिर क्या बन गया, जैसे माजीरा। तो मुराद है झूठे उजर, बहाने, झूठे उजर और बहाने। तो मुफस्सरीन जो है ये जो माजीरा है इसके दो मानी बयान करते हैं। कहते हैं कि अगर इसको माजीर के मानी में लिया जाए तो मानी है एजार, उजर। और दूसरे मानी जो है वो कहते हैं कि माजीर का लफ्ज मस्तूर के मानी में है, और जिसे जिसके मानी है पर्दा। ये इंसान अगर जे पर्दे के पीछे भी कोई अमल करे और यूं समझे कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन क्या है कि ये उसकी जो है वो बेवकूफी है, उसका अमल, उसका वजूद, उसके जिस्म के अज़ा जो है ना इसके खिलाफ गवाहियां देंगे। और आप एक बात और याद रखें, और ये बड़ी अहम बात है, कि इंसान एक तरफ गुनाह करता है, दूसरी तरफ उजर करता है। उजर होता क्या है, उजर होता है कि बहाने करना, उजर तराशना, कि जब गलती हो जाती है तो इंसान फिर अपने आप को जो है ना उस सेफ साइड पे लाना चाहता है। असल में मैं उठी इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने उठाया नहीं, मैं सोई रह गई, अलार्म जो था वो बेटी ने लगाया नहीं, शौहर ने अलार्म नहीं लगाया, फजर में सोई रह गई। और जो है वो दूध इसलिए उबल गया कि फोन आ गया था, नमाज इसलिए कजा हो गई कि मेहमान आ गए थे, ज़कात इसलिए नहीं दी इसलिए कि जो है वो मेरे मियाँ ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो जेवर तो मैं पहनती हूँ ना, तो ज़कात देना मुझ पे फर्ज है। अगर मियाँ दे दे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना जेवर ही दे देना चाहिए, लेकिन ज़कात देने से पीछे नहीं रहना चाहिए। वो औरत जो आपके पास आई, उसके साथ उसकी बेटी भी थी, उसकी बेटी ने हाथ में सोने के दो कंगन पहने हुए थे बाजू में, पूछा कि क्या तुम उसकी ज़कात देती हो, कहा कि नहीं। पूछ फिर कहा कि क्या क़यामत के दिन तुम ये पसंद करती हो कि इन सोने के दो कंगनों की जगह आग के कंगन तुम्हें पहना दिए जाएं। तो इंसान के पास कोई उजर नहीं है, कोई बहाना नहीं है जो इंसान जो है वो अल्लाह के सामने पेश करे। लेकिन अगर मैं और आप गौर करें, कभी फ्लाइट मिस हो जाए, कभी हुई किसी की मिस? एक दफा पाकिस्तान में थे और कराची में कोई थी स्पीच या कोई डिबेट वगैरह थी तो जाना था, और हम तालिबे इल्म हम दोस्त जो थे वो जाना था, और जो है वो पता ना चला जहाज के टाइम का, और किसी ने बुकिंग कराई थी, तो फिर आपस में एक दूसरे को कह रहे थे कि असल में उसको हमें बताना चाहिए था, और फिर ये नहीं पता था कि एयरपोर्ट का सफर कितना है, और फिर क्या हुआ कि जहाज मिस हो गया, फिर गए दूसरी फ्लाइट से। लेकिन कभी वो बात नहीं भूलती। एक दफा बस ये वाकया हुआ जिंदगी में, और हालांकि बहुत सफर किया जहाज का, लेकिन कभी वो बात भूलती नहीं ना। तो होता क्या है कि इंसान जो है कभी जहाज रह जाता है, कभी दूध उबल जाता है, कभी कपड़ा फट जाता है, और कभी जबान से बहुत से लफ्ज निकल जाते हैं। ये तो मैं मिसालें दे रही हूँ दुनिया में जो नुकसान होता है ना, लेकिन जो है वो आखिरत के जो है वो के नमाजें जब सामने लाई जाएंगी कि ये तुमने पढ़ी नहीं थी, इसी तरह जो है इंसान के गुनाह ढेर बनाकर पहाड़ बनाकर जब उसके सामने लाए जाएंगे, फिर इंसान सोचेगा कि मैंने जो है ये काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया ना, और उजर और बहाने तराशना चाहेगा और बचना चाहेगा, तो उस दिन जो है वो कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो ये जो है वो सारी आयात जो यहाँ पर आई हैं, आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 15 तक, इसमें कयामत के दिन की हौलनाकी, इंसान का इनकार करना, हुज्जतें बहाने तराशना, उस पर जो है वो मलामत की गई है कि उस दिन जो है उसका मलामत करना उसको कुछ भी फायदा न दे सकेगा। तो आप जो है आप भी अपना मुहासबा करें, मैं भी अपना मुहासबा करूं, और फिर देखें कि अब क्या करना चाहिए कि अब तक जिंदगी का कसीर हिस्सा ऐसे ही जाया कर दिया, तो अब क्या करना चाहिए कि अब अपनी आखिरत का मामला दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, कोई चांस नहीं लें, कोई रिस्क नहीं लें, बल्कि क्या करें कि अपने अमलों की बुनियाद जो है आज पर रखें, और बहुत मुस्तदी के साथ, बहुत तेजी के साथ, और यकीन होना चाहिए कि हाँ कयामत जो है वो आने वाली है, मेरी मौत आने वाली है, फिर मैं क्या साथ लेकर जाऊंगी, मैं क्या करूंगी।